समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं चारू सक्सेना और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। हाय अभिषेक।
हेलो चारू, हाउ आर यू?
या फाइन अभिषेक। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे एक परिक्रमा लेती है ना, तो पल मिनट बन जाते हैं और मिनट घंटे, और फिर यूं ही दिन महीने साल। अब या तो हम भविष्य क्या होगा इससे डर लें, या अपने हाथों में समय की बागडोर लेकर कुछ कर लें। पर मुझे लगता है विश्वास कीजिए, एक एक कदम लेते हुए आप भी एक दिन जल्द ही अपने ही लिए नहीं बल्कि सबके लिए सुनहरा भविष्य बनाने वाले बन जाएंगे।
Absolutely. Live every moment, live every minute, live every second. Hello and good afternoon. You're tuned to Parikrama 100.1 FM. I'm Abhishek Mukhopadhyay, and with me today is my co-host Charu Saxena. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi on his way back to New Delhi after a successful three-nation tour. Holds meetings with 31 world leaders and heads of organizations during his visit to Nigeria, Brazil and Guyana.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिकों से भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए राष्ट्र प्रथम दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने हैदराबाद में सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम लोक मंथन का उद्घाटन किया।
At least 10 Maoists killed in encounter with security forces in Sukma district of Chhattisgarh.
झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की कल होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। विभिन्न राज्यों की 46 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती भी होगी।
And now, Charu, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about 55th International Film Festival of India, that is the IFFI. Well, the 55th edition of IFFI is celebrating the diversity of cinema with a perfect blend of international collaborations, regional flavors and technological advancements. And IFFI's global outreach continues to grow stronger. And Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, launched Waves over the top OTT platform of the national public broadcaster Prasar Bharati at the opening ceremony of the 55th International Film Festival in India, IFFI, held in Goa.
एक बात है अभिषेक, प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ भारत के प्रतिष्ठित सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्लेटफॉर्म क्षेत्र में कदम रखा है और मंच का लक्ष्य क्लासिक सामग्री और समकालीन प्रोग्रामिंग का एक समृद्ध मिश्रण पेश करके आधुनिक डिजिटल रुझानों को अपनाते हुए पुरानी यादों को पुनर्जीवित करना है। और मुझे यकीन है कि हमारे श्रोता उन क्लासिक शो को देखने और उसके अलावा जो रोमांचक सामग्री है उसके साथ पुरानी यादों को फिर से जीने के लिए उत्साहित ही होंगे।
Absolutely, Charu, it's yesterday once again, and Waves is making its entry as a large aggregator OTT with inclusive India stories embracing Indian culture with an international outlook in 12 plus languages, Hindi, English, Bengali, Marathi, Kannada, Malayalam, Telugu, Tamil, Gujarati, Punjabi, Assamese. It will be spread across 10 plus genres of infotainment. And it will provide video on demand, free-to-play gaming, radio streaming, live TV streaming, 65 live channels, several app integrations for video and gaming content, and online shopping through Open Network for Digital Commerce, ONDC-supported e-commerce platform.
और प्रसार भारती के अध्यक्ष श्री नवनीत कुमार सहगल ने IFFI के 55वीं संस्करण में वेव्स ओटीटी और इसकी पेशकश पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि स्वच्छ पारिवारिक मनोरंजन को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाया जाए। प्रसार भारती के एक ओटीटी प्लेटफॉर्म की स्पष्ट आवश्यकता महसूस की गई, जिसके कारण वेव्स की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा, समाचारों, खेलों के अलावा समसामयिक मामलों के कार्यक्रमों को भी नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। श्री सहगल ने ये भी कहा कि ये मंच भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इतिहास को प्रदर्शित करेगा। उन्होंने बताया कि कुछ प्रमुख सामग्री को छोड़कर वेव्स ओटीटी को डाउनलोड करने और इसमें सामग्री देखने के लिए कोई शुल्क नहीं है।
Yes, Charu and Sri Gaurav Dwivedi, CEO of Prasar Bharati, said, "There's a need for the public broadcaster to remain present in all platforms, as we have to make information and content available for the audiences all across a large country. And the medium which is for all Indians will be of immense use for the people who have moved away from their roots but want to stay connected with their own culture," he added.
Or 4G, 2.0 waves, OTT par uplabdh hoga. ये बहुत अभिषेक टाइम में बहुत फेमस रहा है और देखिए अभी भी
that's why that's what I'm saying चारू this waves platform will bring back all your old memories back and bring them to life in the present times and the younger generations who missed out on such a beautiful content which was broadcast earlier will again get the opportunity to relive this old shows again isn't it
बिल्कुल और पता है 4G 2.0 1980 के दशक के प्रतिष्ठित खैर अभी भी वो बहुत फेमस है शाहरुख खान उनका ये जो शो है ये बहुत ही फेमस हुआ था और अब उसे आधुनिकरण उसका किया गया है आधुनिक रूपांतरण है ये इस नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए मुख्य अभिनेता ने कहा कि 4G 2 उन लोगों के जीवन को दिखाती है जो भारत का प्रतिनिधित्व और सुरक्षा करते हैं दूरदर्शन के बारे में बोलते हुए अभिनेता विकी जैन ने कहा डीडी के सभी शो अपने लिए ब्रांड हैं उन्होंने कहा हम में से कई लोगों ने महामारी के दौरान परिवार के साथ रामायण और महाभारत देखी है उन्होंने ये भी कहा कि डीडी उन दर्शकों को कवर करता है जिनकी केबल टीवी तक पहुंच नहीं है खैर ये तो बहुत बड़ा सच है हर आदमी ये चीज नहीं करवा सकता तो एटलीस्ट एक फ्री होने के नाते हमारा दूरदर्शन मिलता है सबको और देखिए संदीप सिंह जो मैरीकॉम अलीगढ़ और सरबजीत जैसी फिल्मों के निर्माण के लिए ये जाने जाते हैं डीडी के मंच पर किसी के कार्यक्रम को प्रदर्शित किया जाना सम्मान की बात है
Yes, and Kak Bhushundi Ramayan, a new original show started on DD National, will also be available on Waves OTT. And renowned film director and producer Ramanand Sagar's grandson, Sri Shiv Sagar, also attended the presser and shared his insights on how the epic series will captivate young viewers. He narrated how more than 350 versions of Ramayans from all over the world were researched to make Kak Bhushundi Ramayan, and the best stories have been taken and portrayed in a new manner, he added. And speaking about Waves OTT, Sri Shiv Sagar said, India's rich history will find an apt platform. Listeners, or better, our film enthusiast listeners, would be knowing that selecting best films from a big collection of films is a difficult task, and selecting 20 Indian films from the 384 films was a difficult task, and non-selection of the films for this IFFI should not necessarily be considered a statement on the quality of the films, expressed jury members. For the feature film section of the Indian Panorama at IFFI 2024, they were speaking at a press conference on the sidelines of the 55th IFFI 2024. So, Charu, the films which have been left out doesn't mean that they're substandard or not meeting the quality requirements, but you know, the selecting them has been the main issue here. And so they have been very selective and, and that is what they were saying. I mean, well, and we're talking about Goa, one last thing I'd like to add, Charu. Goa is indeed a great location, isn't it? And I'm sure our listeners were feeling the exciting atmosphere that would be on the place right now during this film festival. So with that, we conclude our discussion on IFFI 2024.
With the launch of Waves OTT, a wave of excitement swept across the nation as it marks the dawn of a new era of infotainment. The platform stands out for its unparalleled diversity, offering programs in over 12 languages, bridging regional and national audiences like never before. This initiative is being lauded as a unifying force, bringing regional content to the forefront for viewers across India and beyond. As an OTT platform, Waves goes beyond traditional video streaming. It combines multiple multiple genres of infotainment with gaming, live streaming, and live TV, making it a versatile hub for entertainment. Adding to its uniqueness, Waves integrates an ONDC-supported e-commerce platform. This enables users to combine online shopping with video-on-demand services, offering a one-stop solution for entertainment, education, and e-commerce. With its innovative features and wide-ranging offerings, Waves is redefining the digital content landscape in India. Here at IFFI, there's a dedicated stall of Waves where cinephiles are participating in fun interactive sessions. One such activity is a quiz based on Prasar Bharati and Doordarshan's iconic shows. A couple that won exciting merchandise in the quiz competition talked to Akashwani and said, "Prasar Bharati always served quite learning and diverse content. It's far from the loud content of other channels, and they wish the same with Waves OTT.
It feels good any to win anything, and it's a good initiative by Prasar Bharati to popularize it among the viewers here.
Yeah, now that even other platforms are getting the TRP, we wish that Prasar Bharati grows."
The couple also shared their experience on participating in the quiz and how they sailed through the questions.
Yeah, we were a bit skeptical about it in the beginning.
Initially.
But
because it's a multiple choice, so it makes it easy. If it were not for the choice, we wouldn't have won the competition.
Okay. And that time, some really popular shows were there on Prasar Bharati. So we were, even though we were not watching it very frequently, but we were knowing about it. So we could answer.
Shivani Satish Malik, a college student and volunteer at Waves OTT stall, termed her experience of volunteering fun and interesting. Talking to Akashwani, she shared the details on the theme of quiz and what's in the bag for winners.
"This is my first time volunteering actually for IFFI festival, and I'm really thrilled to do this, and I'm working as a volunteer to promote the Waves app by Prasar Bharati. So it's very fun interacting with the audience and all the guests who are coming. We are conducting a quiz which is pretty interesting, and people are enjoying our company. So the quiz is basically based on the questions which are based related to DD National TV shows which used to air in the earlier days. So it's like a nostalgic kick to all the 90s kids whoever are coming to take up the quiz. And they are winning two merchandise, that is a t-shirt and a water bottle. Actually, everybody is having fun."
With crowd interacting at Waves stall and over 50,000 downloads in just 48 hours, Prasar Bharati's OTT is creating waves in both digital and the real world in true sense. With Durgesh Bhadauria, this is Om Vesh Upadhyay, Panji, Goa.
और अब समय हो गया है अपने संवाददाताओं के माध्यम से देश के अलग अलग भागों में होने वाली गतिविधियों से अवगत कराने का. तो अभिषेक, सबसे पहले कहाँ ले चल रहे हैं?
Absolutely, and continuing the excitement around IFFI, let's talk about Charu, the Manipuri films. And for the first time, the best debut director of Indian film segments has been introduced in the festival, and five movies are selected in this segment. Among these five films is a Manipuri film, Boom, scripted and directed by Lakshmi Priya Devi of Manipur. And let's hear more from our Imphal correspondent, J.J. Thokcham, about the movie.
The Manipuri film Boong is produced by Farhan Akhtar, Vikesh Bhutani, Alan McAlex, Ritesh Sidwani and Sujat Chowdhakar. Most of the stars of the films are from Manipur, and the film had its world premiere at the 2024 Toronto International Film Festival under the Discovery section. Moreover, the film was premiered at other international film festivals held in different countries this year and won excellent in feature filmmaking at International South Asian Film Festival held in Canada this year. Boong is Lakshmi Priya Devi's directorial debut. She worked as an assistant director on several Bollywood films including Lakshya, PK, Talash, The Answers Lies Within, Swadesh, Rang De Basanti, A Suitable Boy, Dusra and others. The film is a story of a schoolboy who struggles to reunite his family and find his father. The film explores themes of family, friendship and the power of the human spirit Samriddhi to find a way forward. The film is set in Manipur and depicts Manipuri culture as heartfelt and endearing. A jury will evaluate 5 films, including Bung of Manipur, shortlisted for Best Debut Director of Indian Films segments during the ongoing festival, and the winner will be announced at the closing ceremony of the festival. These 5 films were shortlisted by a preview committee from 117 eligible entries. J.J. Thokchom, Akashvani News, Parikrama, Imphal.
देखिए अभिषेक, प्रदूषण के कारण माहौल बहुत खराब होता जा रहा है, और ये जो खराबी है ना, किसी एक वजह से नहीं है.
Absolutely, the air we are breathing is indeed very poisonous, and people in Delhi are gasping for breath, and which is a very alarming situation if you ask me.
बिल्कुल बिल्कुल. देखिए, राजस्थान में भी वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, और राज्य के कई शहरों में तो आबोहवा की स्थिति पिछले 3-4 दिन से बहुत ज्यादा खराब मापी जा रही है, और इससे देखते हुए राज्य सरकार ने इसके नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. हमारे संवाददाता जितेंद्र की ये रिपोर्ट सुनिए.
राजस्थान के सभी थानाधिकारियों को अपने क्षेत्र में पराली जलाने से रोकने के लिए पाबंद किया गया है. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन ने कल इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. ये आदेश उच्चतम न्यायालय के 7 नवंबर को जारी निर्देशों की पालना में जारी किए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि अगर थाना क्षेत्र में पराली जलाने की घटना होती है तो थानाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा प्रदेश के जिला कलेक्टरों द्वारा फसल अवशेषों को खेत में ही जलाने की प्रवृत्ति को रोकने और फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के लिए उपखंड स्तर पर समितियों का गठन किया जा रहा है. वायु प्रदूषण को देखते हुए कुछ शहरों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है, साथ ही अत्यधिक प्रदूषण करने वाली खदानों को भी बंद कर दिया गया है. परिक्रमा के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी.
Yes, and 82 young artists were awarded with the Ustad Bismillah Khan Yuva Puruskar, New Delhi today. The awards were conferred for the years 2022 and 2023 in a special ceremony by Culture Ministry Secretary Arunis Chawla. The Yuva Puruskar honors the young artists in the field of music, dance, drama, folk and tribal art forms. The awards carry a purse money of 25,000 rupees and is awarded to artists under the age of 40. And expressing delight on this occasion, an awardee from Rajasthan named Yusuf Khan Miwati talked about his experience on being conferred with the award.
मेरा नाम यूसुफ खान मेवाती है, मैं अलवर राजस्थान का हूँ. हमारा एक फोक वाद्य यंत्र है भपंग, जिसके लिए मुझे वर्ष 2023 का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया गया है. आज बड़ी खुशी की बात है. मेरे घर में 3 नेशनल अवार्ड प्राप्त हुए हैं. मेरे दादाजी को भी नेशनल अवार्ड मिला, मेरे पिताजी को भी, और आज सबके आशीर्वाद से मुझे भी 2023 का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब युवा पुरस्कार मिला है, और बहुत खुशी हो रही है.
Yes, and another awardee named Padma Dolkar shared her reaction on becoming the first young artist from Ladakh to be conferred with the award.
मैं पद्मा डोलकर ले लगा हूँ, और मुझे 2023 के लिए बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की अवार्ड मिली है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि लद्दाख से मैं पहली वो युवा हूँ जिसको बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला है. और मुझे लगता है कि इस अवार्ड के बाद बहुत सारे जितने भी यूथ्स हैं सबको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा हमारे फोक कल्चर को प्रिजर्व करने में. तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, और संगीत नाटक अकेडमी को मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं उनका कि मुझे ये पुरस्कार दिया गया.
और अब चलते हैं महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में कल होने वाली विधानसभा चुनाव की मतगणना पूरे देश की निगाहें वहां थमी है, और इस बार हो रहे चुनाव बहुत ही अहम है. महाराष्ट्र की 288 में से 70 से अधिक सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होगा, जिसमें अकेले विदर्भ क्षेत्र की 36 सीटें शामिल हैं. हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रहा है. सुनते हैं एक रिपोर्ट.
महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए हुए हाई वोल्टेज प्रचार में मुख्य रूप से विभिन्न स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी गई. विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में मुख्य रूप से सोयाबीन और कपास जैसी कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों की चुनौतियों जैसे सब मुद्दे सबसे आगे रहे, जबकि कोंकण क्षेत्र में अभियान, विकास परियोजनाओं के लिए स्थानीय विरोध और बेमौसम बारिश से हुए नुकसान पर केंद्रित रहा. उत्तरी और पश्चिमी महाराष्ट्र में चुनाव बेरोजगारी, कृषि नुकसान और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित मुद्दों के बीच रहा। इसके अलावा सत्ताधारी महायुति द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई लाड़की बहन योजना और मराठा समाज के आरक्षण जैसे मुद्दे भी इस चुनाव में प्रचलित रहे। विधानसभा चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच भले ही स्पष्ट मुकाबला है, लेकिन इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार और छोटे दलों की भी अहम भूमिका होगी। परिक्रमा के लिए अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
The voting for the Maharashtra Assembly elections was held on 20th November with more than 66% of voters turnout. In this, Kolhapur district recorded the highest ever voter turnout in the state with an impressive 76.63%. The overwhelming participation by the voters is attributed to the district administration, which implemented various initiatives and activities. And the Chief Executive Officer of Kolhapur Zila Parishad, Karthikeyan S., elaborates on these efforts.
Under the leadership of Honorable Collector, we implemented a lot of initiatives to increase the voters' turnout in Kolhapur. Kolhapur has a history of having a very high voters' turnover. If you see the 2019 Maharashtra Vidhan Sabha elections, it was 74.1 and it was the highest ever voter turnout in the state of Maharashtra. So we wanted to keep this tradition alive and we wanted to increase the voters' turnout. So there's a lot of initiatives. All the students of Kolhapur wrote a letter to their parents through proper channels requesting them to vote. Apart from that, we had covered all the transport yantrana of Kolhapur, bus stand, railway station, airport, national highways, state highways. So we had put flexes, we had the voice announcement, audio announcement, and we had also done pre-voting announcement at airport. Apart from that, there are 322 polling stations, polling area, polling booth, where the voter turnout was very less as compared to the state average. In all the 322 places, first we had told them that you had voted less, and we had also put banners to requesting them to vote more. Apart from that, there are very large employers, for example, GST, income tax, forest department, postal department. So we used all this yantrana to do janja. For example, every post women and post men, whenever they go deliver a letter, they had to tell the people to come and vote. Apart from that, we had done activity in all the 3,000 industrial units. We had created a video using the district icons, and this video was being broadcasted at all the movie theaters before the beginning of the movie. Apart from that, we had a marathon, cyclocon.
Now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember the incredible warrior and freedom fighter Jhalkari Bai, who was born on the 22nd of November, 1830. An advisor and confidant to the legendary Rani Lakshmibai, she played a key role in the battle formations alongside Lakshmibai and emerged as a prominent fighter during the First War of Indian Independence in 1857.
Jhalkari was born to Sadoba Singh and Jamuna Devi in Bhojla village near Jhansi. Jhalkari didn't go to school for a formal education, but was taught to wield weapons skillfully and given horseback riding lessons since her childhood. Tales of her bravery were famous in Jhansi's households. It is said that once when dacoits tried to raid the village, Jhalkari single-handedly drove them away. She is also said to have killed a tiger with her axe when the animal tried to attack her in the jungle.
Rani Lakshmibai spotted Jhalkari during a festival celebration in Jhansi Fort and was surprised by the uncanny resemblance Jhalkari shared with her. When the Queen was briefed on Jhalkari's brave acts, she was quickly inducted into the women's wing of the army. In 1858, when British Field Marshal Hugh Henry Rose attacked Jhansi, Rani Lakshmibai took on the British forces from her fort with just an army of 4,000. However, she was betrayed by one of her own commanders, thus making defeat imminent.
Counseled by her generals, Lakshmibai quietly slipped away from Jhansi on horseback. Jhalkari Bai set out for General Rose's camp in disguise and declared herself to be the queen. This led to a confusion that continued for a whole day and gave Lakshmibai enough time to escape. Rose ne poocha saath mein tere kaisa kare vyavhar. Haansi de do Jhalkari ne kaha ye barambar. Jhalkari Bai died on 4th April 1858 while defending her queen and fighting for her motherland. Rose kahe yadi aisi hoye ek pis dina chhod.
Her courage has left behind a rich legacy for millions to emulate. There is a statue in her honor in Gwalior. In 2001, the government of India released a stamp to pay tributes to Jhalkari Bai, a warrior who lived and died defending her people and her country. We salute her indomitable spirit.
In business news today, domestic benchmark equity indices today soared over 2%, fueled by buying across sectors. The 30-share BSE Sensex surged 1,961 points, or 2.54%, to close at 79,117, while the NSE Nifty 50 jumped 557 points, or 2.39%, to settle at 23,907. In the global crude market, Brent crude was trading 0.43%, up at $74.55 per barrel, and WTI crude gained 0.41% to trade at $70.39 per barrel when reports last came in. In cricket, Australia was 67 for 7 in the first innings against India at stumps on day 1 in the opening test match of the Border Gavaskar Trophy in Perth. Jasprit Bumrah led India's fight back from the front with 4 wickets on day 1. Earlier, India got off to a weak start and were bundled out for 150 runs in the first innings.
और अब वक्त है करीब से देखने का उन खास लोगों को जिन्होंने आज जन्म लिया या दुनिया से विदा हुए।
Clive Staples Lewis, or C.S. Lewis, passed away on this day in 1963. He was a British writer, literary scholar, and Anglican lay theologian. He held academic positions in English literature at both Magdalen College, Oxford, and at Magdalen College, Cambridge. He is best known as the author of the Chronicles of Narnia.
और अब हम बात करते हैं ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी की। जी हां, उनका जन्म आज ही के दिन 1940 को हुआ था। भारतीय फौज में शानदार सेवाओं के लिए उन्हें महावीर चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया था। उन्होंने लोंगावाला के युद्ध में भारतीय सेना का वीरता से नेतृत्व किया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में राजस्थान के लोंगावाला मोर्चे पर हुई इस लड़ाई में चांदपुरी लोंगावाला पोस्ट पर तैनात थे। उस दौर में वो मेजर चांदपुरी हुआ करते थे। सीमा पार पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट थी और चांदपुरी की कमांड में सिर्फ 120 जवान थे। उन्होंने अपनी वीरता से दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। और अगर सच कहा जाए तो जितने भी जवान हैं, हम सब देशवासियों की तरफ से उनको सैल्यूट होता ही होता है। वो लोग इस कदर काम करते हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। अब देखिए कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके साथियों की लोंगावाला मोर्चे पर दिखाई बहादुरी पर बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर बनाई गई थी।
वाहेगुरु तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा।
Yes, and oldest Leonard Huxley passed away on this day in 1963. He was an English writer and philosopher. His bibliography spans nearly 50 books, including non-fiction works as well as essays, narratives and poems. Born into a prominent Huxley family, he graduated from Balliol College, Oxford, with a degree in English literature. Early in his career, he published short stories and poetry and edited the literary magazine Oxford Poetry before going on to publish travel writings, satire and screenplays. He spent the latter part of his life in the United States, living in Los Angeles from 1937 until his death. And by the end of his life, Huxley was widely acknowledged as one of the foremost intellectuals of his time. He was nominated for the Nobel Prize in Literature 9 times and was elected Companion of Literature by the Royal Society of Literature in 1962.
भारत की पहली महिला चिकित्सक रुक्मा बाई राउत का जन्म आज ही के दिन 1864 को हुआ था। सूरत के महिला अस्पताल में लोगों की चिकित्सा करने वाली डॉक्टर रुक्मा बाई एक सामाजिक सुधारक भी थी और उन्होंने महिला और बाल अधिकारों के लिए आवाज उठाई। लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन के स्नातक करके 1895 में वो भारत लौटी और वो एक ऐतिहासिक कानूनी मसले के केंद्र में भी रही, जिसके परिणाम स्वरूप एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 कानून यानी दो वयस्कों के बीच शादी करने की वैधानिक उम्र तय की गई। गूगल के उनके सम्मान में 22 नवंबर 2017 को एक डूडल बनाया था।
जॉन ग्रिफिथ चानी पास्ड ऑन दिस डे 1916, बेटर नोन एज जैक लंडन। ही वाज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट, अ पायनियर ऑफ कमर्शियल फिक्शन एंड अमेरिकन मैगजीन्स। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट अमेरिकन ऑथर्स टू बिकम एन इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एंड अर्न अ लार्ज फॉर्च्यून फ्रॉम राइटिंग। ही वाज आल्सो एन इनोवेटर इन द जॉनर दैट वुड लेटर बिकम नोन एज साइंस फिक्शन।
तो अभिषेक, समय बहुत कम है, अगर फिर भी आप कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं।
Yes, I'd like just like to add here one more the personality, Charu. John Anthony Burgess Wilson passed away on this day in 1993, who published under the name of Anthony Burgess. He was an English writer and composer.
आज की परिक्रमा यहीं समाप्त करते हैं, तो इजाजत दीजिए मुझे यानी चारू सक्सेना और मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय को।
Yes, so till the next time, bye and namaskar.